नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। यूएई स्थित लुलू समूह अगले 3 वर्षों के दौरान भारत में मौजूदा परियोजनाओं पर 10 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। लुलू समूह के चेयरमैन यूसुफ अली एमए ने सोमवार को यहां जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समूह ने देश में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य भारत में 50,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है और तब तक उनके विभिन्न उद्यमों ने 22,000 से अधिक नौकरियां दी हैं। यूसुफ अली ने ये भी कहा कि लुलू समूह ने अगले 5 वर्षों के दौरान तेलंगाना में डेस्टिनेशन शॉपिंग मॉल सहित विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा, हमने शॉपिंग मॉल, होटल, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित विभिन्न क्षेत्रों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यूसुफ अली ने आगामी परियोजनाओं में कुल निवेश के बारे में पूछने पर कहा, हमने अहमदाबाद में एक शॉपिंग मॉल का निर्माण शुरू कर दिया है। हम चेन्नई में एक और शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, एक खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र नोएडा में और दूसरा तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं पर अगले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने अपने निवेशकों से वादा किया है कि वह वित्त वर्ष 2021-22 का ऑडिट सितंबर तक और 2022-23 का ऑडिट दिसंबर तक पूरा कर लेगी। मामले से परिचित सूत्रों ने ये जानकारी दी। गौरतलब है कि बायजूस का ऑडिट लंबे समय से लंबित है। बायजू के सीईओ बायजू रविंद्र ने शनिवार को शेयरधारकों के साथ एक बातचीत में अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि ऑडिट को जल्द पूरा किया जाएगा। बातचीत के दौरान रविंद्र ने बोर्ड सदस्यों के इस्तीफे की बात मानी, लेकिन कहा कि कंपनी ने अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं किया और इन इस्तीफों की जानकारी समय से पहले बाहर आ गई। बातचीत में शामिल एक व्यक्ति ने पीटीआई भाषा को बताया। बायजू रविंद्रन ने इस दौरान समूह सीएफओ अजय गोयल का परिचय कराया। गोयल ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 का ऑडिट क्रमशः सितंबर और दिसंबर तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। ऑडिट फर्म डेलॉइट ने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में देरी का हवाला देते हुए बायजू के ऑडिटर के रूप में इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड के 3 सदस्यों ने भी एक साथ इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया ऐप पेश किया गया है। BLR हवाई अड्डे का संचालन करने वाली बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रामेटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज के साथ मिलकर BLR प्लस नाम के इस ऐप को तैयार किया। BLR प्लस की मदद से यात्रियों को हवाई अड्डे पर एक नया अनुभव मिलेगा और ये ऐप उनके लिए एक व्यक्तिगत डिजिटल यात्रा मित्र की तरह काम करेगा। BILL ने सोमवार को एक बयान में कहा, ये ऐप यात्रा से जुड़े सभी सवालों जैसे सुरक्षा जांच के लिए लंबी कतारें, प्रतीक्षा समय आदि की जानकारी देता है। ये यात्रियों को हवाई अड्डे के भीतर रास्ता दिखाने और वास्तव समय में जरूरी जानकारी देकर यात्रियों की प्रस्थान तथा आगमन पर मदद करता है। बयान के अनुसार ऐप में संवादात्मक चैटबॉट फीचर होने से विभिन्न प्रश्नों के जवाब आसानी से उपलब्ध होंगे और इस सुविधा को समय के साथ अधिक बेहतर बनाया जाएगा। बोइंग के सीईओ डेविड एल केलहॉल ने कहा कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करती है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि कंपनी देश के वाणिज्यिक विमानन बाजार के तेजी से विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केलहॉल ने 23 जून को वॉशिंगटन डीसी में मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने भारत के विमानन क्षेत्र में बोइंग की व्यापक उपस्थिति पर चर्चा की, जिसमें विमानों का रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल शामिल है। प्रधानमंत्री ने बोइंग को भारत में अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। केलहॉल ने रविवार को कहा, बोइंग को भारत के वाणिज्यिक विमानन बाजार के तेजी से विस्तार और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर गर्व है। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करते हैं। भारत में 5,000 से अधिक लोग बोइंग टीम में नवोन्मेषी काम करके उच्च गुणवत्ता वाले करियर को अपना रहे हैं। केलहॉल ने कहा कि भारत में बोइंग का बढ़ता निवेश देश के साथ कंपनी की साझेदारी को दर्शाता है और साथ ही सकारात्मक अमेरिकी भारत आर्थिक संबंधों को भी रेखांकित करता है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को उद्योग से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अपने कामकाज में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का आग्रह किया। बिजली राज्य मंत्री ने यहां के बदरपुर में स्थित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में अत्याधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। भारी उद्योग मंत्रालय ने भी राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे गुर्जर ने कहा, देश के विकास के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जरूरी है। आज अगर हमें दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की कम खपत से विभिन्न उद्योगों की उत्पादन लागत कम होगी और उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। एनपीटीआई की महानिदेशक तृप्ता ठाकुर ने कहा कि लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, लुगदी एवं कागज और कपड़ा जैसे उद्योग का देश में कुल वाणिज्यिक ऊर्जा खपत में लगभग 30% का योगदान है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।